पृष्ठ संख्या 127, अमेरिका। अमरीकी तथा मंचूरियाई रेल मार्ग मंचूरिया पर से जापान के नियंत्रण को कम करने के प्रयत्न किए गए। अभी पोर्ट्समाउथ की संधि पर हस्ताक्षर भी नहीं हुए थे कि अमेरिका के प्रतिभाशाली रेल विशेषज्ञ हैरी मैन ने जापान के अधिकारियों के साथ रूस द्वारा छोड़े हुए मार्ग खरीद लिए। उसने अटलांटिक और प्रशांत महासागर में नौ मार्ग खोलने तथा ट्रांस साइबेरियन मार्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की योजना बनाई, जिससे विश्व के चारों ओर एक ऐसी परिवहन व्यवस्था चालू की जा सके जिस पर उसका पूर्ण नियंत्रण हो। यह व्यवस्था जापान के विस्तार के मार्ग में बाधक थी। यद्यपि ईतो इसके पक्ष में था, लेकिन पोर्ट्समाउथ में जापानी चीफ कमिश्नर के परामर्श पर इसे अस्वीकार कर दिया गया। ब्रिटेन और अमेरिका के पूंजीपतियों ने चीन से जापान व रूस के प्रभाव क्षेत्रों में रेलों के विकास के संबंध में रियायतें प्राप्त करनी चाहिए। हैरिमैन ने उन रेल मार्गों के बारे में बातचीत शुरू की जो अभी तक रूस के नियंत्रण में थी। अमेरिका ने अपने सचिव पीसी नॉक्स के द्वारा मंचूरिया की रेलों की प्रतिस्पर्धा में एक योजना पेश की। पाश्चात्य देशों के संयुक्त रूप से विद्यमान रूसी और जापानी रेलों को खरीदने के लिए तथा आवश्यकता के अनुरूप अतिरिक्त मार्गों के निर्माण के लिए चीन को ऋण देने का फैसला किया। कुछ समय के लिए इन रेलों के प्रबंध को अंतर्राष्ट्रीय आयोग के हाथ में देने की व्यवस्था की गई। यह एक बहुत महत्वपूर्ण योजना थी, क्योंकि इसको कार्यान्वित करने का अभिप्राय था कि प्रभाव क्षेत्र पट्टे पर अभिगृहित क्षेत्र विशिष्ट हित तथा इसी प्रकार के अन्य तरीकों की आड़ में, जिस प्रकार आज अन्य देश एकमात्र अपने उपभोग के लिए चीन के कुछ भाग को हथियार लेने का प्रयत्न कर रहे थे, उसके स्थान पर चीन को उदार अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्राप्त हो जाएगा। यदि यह योजना सफल हो जाती तो वहां षड्यंत्रों और कुचालों में कमी आ जाती और साथ ही संघर्ष एवं युद्ध के कारण भी घट जाते। अमेरिका ने इस प्रस्ताव को जापान एवं रूस के विस्तारवादियों द्वारा स्वीकार किए जाने की बहुत कम संभावना थी, चूंकि दोनों देशों का अपने अपने राजधानियों पर नियंत्रण था और संभावित कार्यवाही से भयभीत होकर दोनों देशों ने न केवल खुले तौर पर इस प्रस्ताव से असहमति प्रकट की, बल्कि परस्पर एक ऐसा समझौता भी किया जिसमें दोनों देशों ने मंचूरिया में संयुक्त रूप से अपने हितों की रक्षा करने तथा उनमें समन्वय स्थापित करने का निश्चय किया। अमेरिका के प्रस्ताव तथा दोनों देशों के समान हितों ने पहले के दो शत्रुओं को एक कर दिया। जापान के व्यापारियों तथा जापानी रेल मार्गों के लिए विशेष अधिकार प्राप्त करने का प्रलोभन बहुत बड़ा था। समय समय पर यह दोषारोपण किया जाता था कि सीमा शुल्क में गोलमाल कर, रेल मार्ग में रियायत पाकर योकोहामा एसबीसी बैंक की मंचूरिया स्थित शाखाओं में सूद की रियायत दर प्राप्त कर तथा करों में छूट और ढिलाई द्वारा जापानी लोग अन्य देशों की अपेक्षा अपने माल एवं व्यापारियों के लिए अधिक रियायत प्राप्त कर रहे हैं। संभव है कि ये कुछ शिकायतें ठीक भी हो, लेकिन जहाँ तक मुक्त द्वार नीति के उल्लंघन का प्रश्न है, यह प्रत्यक्ष के बजाय अप्रत्यक्ष रूप से अधिक हुआ था। 1914 तक चीन की जापान में रुचि। चीन में जापान का स्वार्थ मंचूरिया तक ही सीमित न था और शीघ्र ही कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि जापान अपने विशाल पड़ोसी चीन के मामलों में अधिक हस्तक्षेप करने लगा। यदि मंचूरिया का इलाका वाणिज्य, खान और औद्योगिक दृष्टि से उपयोगी था, तो चीन इस दृष्टि से और भी अधिक संपन्न था। यह मेहनतकश एवं मितव्ययी लोगों की बहुत बड़ी संख्या थी जो संभवतः माल की खपत के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार सिद्ध हो सकती थी। यहाँ कच्चे माल तथा कोयले एवं लोहे का विपुल भंडार था, जबकि जापान में, जो एक औद्योगिक देश था, लोहे का लगभग अभाव था और उसे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता थी। यह वाणिज्यिक विस्तार के लिए एक प्रकृति प्रदत्त क्षेत्र था। उद्योग एवं वाणिज्य के क्षेत्र में प्रत्येक संभव तरीके से चीन के साथ जापान के व्यापार को बढ़ावा दिया गया। यांगत्सी एवं उसकी उपनदियाँ जापान की आर्थिक सहायता द्वारा प्रचलित स्टीमर नावें बहुत अधिक संख्या में चलने लगी। यांगत्सी एवं उसकी उपनदियों में जापान की आर्थिक सहायता द्वारा प्रचलित स्टीमर नावें बहुत अधिक संख्या में चलने लगी। प्रमुख संधि बंदरगाहों पर जापानी डाकघर तथा वाणिज्य दूतावास स्थापित कर दिए गए। सैकड़ों की संख्या में वहां जापानी व्यापारी आए और चीन के सरकारी विद्यालयों में जापानी अध्यापक नियुक्त होने लगे। सन 1901 के बाद से हजारों की संख्या में चीनी विद्यार्थी जापान आने लगे थे, क्योंकि उन्हें पाश्चात्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए पश्चिमी देशों में स्थित विश्वविद्यालयों की अपेक्षा टोक्यो अधिक पास तथा कम खर्चीला पड़ता था। इन लोगों ने अपने देश में लौटने पर वहाँ के सुधार समर्थक आंदोलनों को निश्चित रूप से जापानी पुट प्रदान किया। 1911 की चीनी क्रांति ने, जिसमें मांचू वंश का तख्ता पलट दिया गया था और उसके स्थान पर एक गणतंत्र की स्थापना की गई थी, जापान को एक बार फिर अपने पड़ोसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का सुअवसर प्रदान किया। यह सच है कि इस क्रांति के साथ साथ चीन में देश प्रेम के क्षेत्र में भी क्रांति हुई और देशवासियों ने विदेशी प्रभाव के विरुद्ध आवाज उठाई। लेकिन क्रांति के साथ ही अव्यवस्था फैल गई और कुछ समय के लिए देश का विकेंद्रीकरण हो गया। फलस्वरूप इसमें कुछ जापानियों के प्रति दुर्व्यवहार की कुछ घटनाएं घटित हुई, जिससे जापान को चीन के सामने भारी मांगे पेश करके उन्हें भयभीत करने का अवसर मिल गया। इसमें कुछ चित्रों का वर्णन इस अध्याय में कुछ चित्रों का वर्णन पोत परवेल का शिकार, उन्नत तकनीक सुधारी किस्म के बीज और रासायनिक खादों के अत्यधिक प्रयोग ने जापान के फार्मों को संसार के समृद्धतम उत्पादकों की कोटि में पहुंचा दिया है। जापान का 12,374 फुट ऊंचा प्रसुप्त ज्वालामुखी फ्यूजी पर्वत अपने भव्य आकार और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध हैं। टोक्यो का एक औद्योगिक खंड अग्रभाग में एक गैस कंपनी का संयंत्र देखा जा सकता है। जापान पिछले 6 वर्ष से संसार में सबसे अधिक पोत तैयार कर रहा है। जापान के एक इस्पात कारखाने का दृश्य। हमात्सु में मोटरसाइकिल के पुर्जे बनाने का संयंत्र। पृष्ठ संख्या 129। जापान सरकार ने इस विद्रोह में विद्रोहियों को किसी तरह की प्रत्यक्ष सहायता दी हो, यह बात सिद्ध नहीं की जा सकती। लेकिन कुछ अधिक उत्साही जापानी, जिनमें कुछ जापानी अधिकारी भी थे, विद्रोहियों की मदद करने के दोषी थे। इस क्रांति के कारण प्रशासन को सुसंगठित रखने तथा सेनाओं को वेतन आदि देने के लिए और अधिक धन की आवश्यकता पड़ी। विदेशी बैंकरों ने, जिनमें मूलतः फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका के प्रतिनिधि सम्मिलित थे, इस शर्त पर विशाल ऋण राशि देने का प्रस्ताव किया कि इसके बदले में जमानत के रूप में कर वसूल करेंगे और इनमें भी विशेष रूप से नमक के व्यापार पर उनका एकाधिकार होगा। इसके साथ एक शर्त यह भी थी कि भविष्य में कभी भी आवश्यकता पड़ने पर चीन केवल इसी वर्ग से ऋण ले सकेगा। जापान एवं रूस ने भी इस वर्ग का सदस्य बनने की मांग की और उन्हें इसकी स्वीकृति मिल गई। इस प्रकार यह षड्देशीय अभिषद यानी सिंडिकेट एक प्रकार से चीन के वित्तीय मामलों पर संरक्षण रखना चाहती थी। विल्सन के प्रेसिडेंट बनने के तुरंत पश्चात अभिषद के अमेरिकी सदस्यों ने इसकी सदस्यता त्याग दी, क्योंकि विल्सन ने यह कहकर समर्थन देने से इनकार कर दिया था कि ऋण की शर्तों से चीन की स्वायत्तता को खतरा है। शेष 5 देशों के प्रतिनिधियों ने ऋण की राशि जमा की, किंतु इसके द्वारा, जैसा कि उन्होंने आरंभ में सोचा था, चीन के वित्तीय मामलों पर एकाधिकार स्थापित करने का उन्होंने कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया। लेकिन इससे अन्य 4 देशों के साथ साथ चीन पर जापान का अधिक दृढ़ नियंत्रण स्थापित हो गया। चीन के साथ जापान के संबंध 1914 से 1916। अगस्त 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। ब्रिटेन के साथ जापान की संधि की शर्तों के अधीन जापान का यह दायित्व था कि यदि सुदूर पूर्व में ब्रिटेन पर कोई आक्रमण हो तो वह उसकी सहायता करे तथा उस क्षेत्र में जर्मनी द्वारा ब्रिटेन के हितों को खतरा पैदा होने पर वह ब्रिटेन के साथ मिलकर उसके हितों की रक्षा के लिए समुचित कार्रवाई पर विचार करे। इस संधि के अधीन अपने दायित्व को पूर्ण करने के लिए जापान पूर्णतः तैयार था, क्योंकि ब्रिटेन के सहयोग से ही वह चीन एवं प्रशांत महासागर में अपनी स्थिति को दृढ़ करने का सुअवसर पा सका था। इस समय यूरोप के देश अन्यत्र उलझे हुए थे और मुक्त द्वार नीति को सुरक्षित बनाए रखने के लिए अमेरिका बल प्रयोग नहीं करना चाहता था। इसलिए वह अपने निकट महाद्वीप के साथ अपनी इच्छा के अनुसार आचरण कर सकता था। 15 अगस्त को जापान ने जर्मन सरकार को एक पत्र भेजा, जिसमें उसे सुदूर पूर्व के समुद्री प्रदेश से जंगी जहाजों एवं सशस्त्र जलपोतों को वापस बुला लेने की सलाह दी गई थी, और साथ ही यह परामर्श दिया गया था कि जिन जहाजों को वहां से लौटाना संभव न हो, उन्हें निशस्त्र कर दिया जाए। इसके आगे पत्र में कहा गया था कि वह पट्टे पर अधिगृहित कियाओ चाओ प्रदेश को उसके हवाले कर दे, ताकि वह प्रदेश अंततः चीन को पुनः लौटा दिया जाए। इस पत्र में सन 1895 में जर्मनी द्वारा जापान को लिखित एक पत्र का हवाला दिया गया था। जापान के उल्लिखित पत्र का जर्मनी ने कोई उत्तर नहीं दिया, अतएव जापान भी युद्ध में सम्मिलित हो गया। जापान ने एशियाई समुद्री प्रदेश से जर्मनी जंगी के जहाजों और आक्रमणकारी युद्धपोतों को हटाने में इंग्लैंड की सहायता की, और उसने प्रशांत सागर में स्थित जर्मनी द्वारा अधिकृत कुछ ऐसे द्वीपों पर कब्जा कर लिया जो आगे चलकर सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। अपने मित्र देश से थोड़ी बहुत सहायता पाकर उसने चीन में अपनी सेनाएं भेज दी तथा घेरा डालकर चिंगताओ पर कब्जा कर लिया, और शांगतुंग प्रदेश की जर्मनी अधिकृत रेलों एवं खानों पर भी अधिकार कर लिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री काउंट ओकुमा ने सार्वजनिक एवं लिखित रूप से घोषणा की कि जापान की कोई प्रादेशिक विस्तारवादी महत्वाकांक्षा नहीं है। जापान ने यह भी घोषणा की थी कि इस कार्य में हमारा कोई नापाक इरादा नहीं है, न तो किसी प्रदेश को ग्रहण करने की हमारी कोई इच्छा है, और न ही चीन से अथवा किसी अन्य देश से उसके वर्तमान अधिकृत प्रदेश को हड़पने का हमारा कोई इरादा है। लेकिन इस असाधारण अवसर से जो प्रलोभन उनके सामने आया, उसका संवरण करना कठिन था। चिंगताओ पर आक्रमण के समय चीन की तटस्थता का समुचित आदर नहीं किया गया था, और समय समय पर चीनियों ने रेलवे प्रदेश के निकट इलाके में जापानी सेनाओं एवं अधिकारियों द्वारा वहां की प्रभुसत्ता को हड़पने की कोशिशों की शिकायतें भेजी थी। चिंगताओ को विचित्र क्षेत्र के समान समझा जाने लगा, यहाँ तक कि इसमें ब्रिटेन के हितों का भी ध्यान नहीं रखा गया। लेकिन जापान किसी और ही दूरव्यापी कार्रवाई की तैयारी कर रहा था। सन 1915 के आरंभ में जापान ने पीकिंग के सम्मुख अपनी मांगे पेश की। इन मांगों को यदि चीन पूर्णतः स्वीकार कर लेता, तो इसका स्पष्ट अभिप्राय यह होता कि चीन का यह विशाल महाद्वीप गणतंत्रपूर्ण रूपेण जापान के अधीन हो जाता। ये 21 मांगे 5 वर्गों में विभक्त थी। पहला, प्रथम वर्ग की मांगे शांतुंग प्रदेश के बारे में थी, चीन के उस प्रदेश पर जहाँ पहले जर्मनी का अधिकार था। चीन को इस बात का वचन देना था कि अगर जापान एवं जर्मनी की सरकारों के बीच उस प्रदेश पर अधिकार के संबंध में कोई समझौता हो, तो चीन उसे अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा। उसे इस बात का भी वचन देना होगा कि वह शांतुंग के प्रदेश एवं उसके तट के साथ साथ लगे भूभाग को किसी अन्य तीसरे देश को न तो सौंपेगा और न ही पट्टे पर देगा। यह जापान को रेल के संबंध में कुछ अतिरिक्त रियायतें देगा तथा व्यापार के लिए कुछ अन्य नए बंदरगाह खोलेगा। दूसरा, द्वितीय वर्ग में वे मांगे आती है जो दक्षिणी मंचूरिया और पूर्वी भीतरी मंगोलिया के संबंध में थी। रेलों और संधि बंदरगाहों के क्षेत्रों पर जो पट्टे जापान को पहले पहल 25 वर्षों के लिए दिए गए थे, उन्हें बढ़ाकर 99 वर्ष का करने की मांग की गई। इनमें जापान के अधिकारियों एवं नागरिकों को न केवल रेलों और संधि बंदरगाहों के क्षेत्रों में ही बल्कि उल्लिखित दोनों प्रदेशों में सर्वत्र यात्रा करने, रहने, व्यापार, निर्माण तथा कृषि के लिए पट्टे पर भूमि देने अथवा खरीदने, मनचाहा व्यापार करने और चीन की सहमति से खानों की खुदाई करने के अधिकारों की मांग की गई थी। चीन में अन्यत्र किसी भी स्थान पर निवास एवं भूमि के स्वामित्व के बारे में अभी तक ईसाई धर्म प्रचारकों के अलावा किसी भी अन्य विदेशी को इतने व्यापक अधिकार नहीं दिए गए। अपरदेशीयता के अधिकारों के अधीन अधिकांश विदेशी निवासी और उनके व्यापारिक कार्य संधि बंदरगाहों तक ही सीमित थे, जहाँ चीन के अधिकार क्षेत्र की विशेष चिंता किए बिना आवश्यक वाणिज्यिक न्यायालय अपने कार्य का संचालन कर सकते थे। चीन को इस बात का भी आश्वासन देना था कि दक्षिणी मंचूरिया या पूर्वी मंगोलिया में किसी भी विदेशी सलाहकार को नियुक्त करने से पूर्व जापान की सरकार का परामर्श लिया जाएगा। इसके अलावा इन क्षेत्रों में रेलों के संबंध में रियायतें देने या इन क्षेत्रों के करों का जमानत के रूप में उपयोग करके ऋण लेने से पूर्व टोक्यो सरकार की अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसके अनुसार जापान ने एक छोटा रेल मार्ग पट्टे पर लेने की मांग की, जो अभी तक उसके नियंत्रण से बाहर था। यदि द्वितीय क्षेत्र के संबंध में इन रियायतों को स्वीकार कर लिया जाता, तो जापान को चीन के कुछ समृद्धतम क्षेत्रों पर एक छत नियंत्रण प्राप्त हो जाता, जिन पर किसी भी तरह के बाह्य हस्तक्षेप की संभावना नहीं हो सकती थी, और साथ ही वह मुक्त द्वार नीति और चीनी प्रभुसत्ता के स्वरूप को भी सुरक्षित रख सकता था। तीसरे वर्ग की मांग हान एहपिंग कंपनी के संबंध में थी। इस कंपनी पर चीन का निजी अधिकार था। यह कंपनी चीन के विशालतम लोहे के कारखानों का संचालन करती थी और खनिज लोहे एवं कोयले के बड़े बड़े निकायों पर इसका नियंत्रण था। जापान की इसे चीन और जापान के संयुक्त व्यवसाय के रूप में चलाने का प्रस्ताव किया था। जापान की सहमति के बिना चीन कंपनी में अपने अधिकारों का विसर्जन नहीं करेगा और कंपनी की अनुमति के बिना वह कंपनी की खानों के निकटवर्ती प्रदेश में खाने चलाने या अन्य ऐसे उद्योग स्थापित करने की अनुमति नहीं देगा जिससे उसके हितों की हानि हो। हान एहपिंग कंपनी की संपत्तियां चीन के मध्यवर्ती भाग में अवस्थित थी। यह क्षेत्र उस प्रदेश में स्थित था जो 20 वर्ष पूर्व इंग्लैंड के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत था। इस समय कंपनी आर्थिक संकट में थी और वह जापान से ऋण भी ले चुकी थी। अगर इन मांगों को स्वीकार कर लिया जाता तो इस कंपनी पर जापान का नियंत्रण होता और इस प्रदेश पर उसका राजनीतिक प्रभाव सुनिश्चित हो जाता। जापान में लोहे का पूर्णता अभाव था और इसके द्वारा वह आगे के कुछ वर्षों के लिए पर्याप्त मात्रा में खनिज लोहा प्राप्त कर सकता था। चतुर्थ वर्ग में जापान ने चीन से यह मांग की थी कि वह जापान को छोड़कर अन्य किसी देश को कोई बंदरगाह, खाड़ी या अपने तटवर्ती प्रदेश का कोई भाग न तो सौंपे और न ही पट्टे पर दे।